તારીખ 28/8/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 239 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 183
પ્રશ્ન ચાલતા प्रश्न करने वाले को ऐसा लगता है कि देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारे परिणाम अगर करेंगे तो हमको शुभ भाव की उपादेयता हो जाएगी या शुभ भाव का पक्ष हो जाएगा, प्रभाव का पक्ष हो जाएगा, वो हमको भय लगता है। तो हम क्या करें? जो यथार्थ भूमिका में नहीं है उसकी ये उलझन है।
बराबर
ज्ञानी को और यथार्थ भूमिका वाले मुमुक्ष को इस प्रकार का उलझन में आना नहीं होता है। एक पैराग्राफ हुआ है, दूसरे पैराग्राफ से जिज्ञासु ने बुद्धिपूर्वक ऐसा निर्णय होता है, जिज्ञासु को बुद्धिपूर्वक ऐसा निर्णय होता है कि गुरु ने जो कहा है कि तेरा शुद्धात्मा विकल्प बिना का निर्विकल्प तत्व है, भाव तेरा स्वरूप नहीं है, तो वो उसकी श्रद्धा करता है। गुरु श्री गुरु ने जैसा कहा है ऐसी श्रद्धा वो करता है, स्वरूप की श्रद्धा करता है, और शुभ भाव आता है तो उसकी श्रद्धा नहीं करता है कि तो मेरा स्वरूप नहीं है, श्रद्धा में ऐसा लेता है। ऐसा गुरु श्री गुरु ने जो कहा वह उसने विचार से दृढ़ किया है, प्रदान करने के लिए क्या किया है, विचार से दृढ़ किया है, इसलिए शुभ भाव आएगा। शुभ भाव आने से उसमें व्यवहार का पक्ष आकर के उसकी श्रद्धा हो जाती, क्योंकि वो तो उस तरह से दृढ़ करता है तो मेरा स्वरूप तो निर्विकल तत्व है, विकल्प बिना का, शुभ भाव जो विकल्प रूप है मेरा स्वरूप है ही, वो बात को दृढ़ किया है तो शुभ भाव में श्रद्धा कहाँ से करेगा, उसने तो वो दृढ़ किया है कि मेरा स्वरूप नहीं है, और वही गुरु का उपदेश था। शुभ भाव से मुझे लाभ हो, शुभ भाव से मुझे लाभ हो, देव शास्त्र गुरु मुझे लाभ कर देंगे, वे जैसा करे वैसा होए, मैं मेरा पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सकता, ऐसी जिसकी मान्यता है, मान्यता नहीं है, ऐसी जिसकी मान्यता नहीं है उसे व्यवहार का पक्ष आता तो नास्ति से बात कर दिया, अस्ति से पहले बात किया कि मैं एक शुद्धात्मा हूँ, अब नास्ति से कहते हैं कि जो स्वभाव की श्रद्धा के कारणभूत परिणाम है उसको स्वीकार नहीं करता, उसको मान्यता में स्वीकार नहीं करता। कैसे कैसे स्वीकार नहीं करता कि स्वभाव से मुझे लाभ हो उसका स्वीकार नहीं है, देव गुरु शास्त्र मुझे लाभ कर देंगे उसका भी स्वीकार उसको नहीं है, और मैं पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे काम कर रही है, ऐसी मान्यता इसकी नहीं है। तो उसकी मान्यता ऐसी नहीं है तो उसको व्यवहार का पक्ष आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, तो नहीं आ सकता। उसे ऐसी श्रद्धा है कि मैं मेरे से करूं तभी होने का है, मैं पुरुषार्थ करूं तभी मेरा कार्य होने का है, ये इनको समझना है। तो आवश्यकता लगेगी तो पुरुषार्थ चालू होगा, आवश्यकता नहीं लगे उसको पुरुषार्थ चालू होता नहीं है। कभी कभी ये प्रश्न होता है तो पुरुषार्थ तो करना है लेकिन होता नहीं, क्या करें? तो पुरुषार्थ नहीं होता है, करना चाहते हैं फिर भी नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि मूल में आवश्यकता लगी नहीं है, जरूरत नहीं लगी। जरूरत समझना एक बात है, जरूरत लगना दूसरी बात है, ये लगने की बात होती है। विचार में तो सब बात सम्मत कर देते हैं हम लोग, लगता क्या है वो सवाल है, सवाल वो है कि क्या लगता है, समझ तो लिया, अब क्या लगता है? जिसकी आवश्यकता लगे उसका पुरुषार्थ चालू हुए बिना अरे नहीं, ये ऑटोमेटिक। पानी की प्यास लगती है या प्यास का विचार आता है? पानी की प्यास ऐसी होती है वैसी होती है, गला सूखता है, बोलने में दिक्कत होती है, कभी खांसी आ जाती है। देखो पानी की प्यास का हमको ज्ञान हो गया है, ये विचार करने की चीज जी है। पानी की प्यास लगेगी, पानी जुटाने का पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसा आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा की शांति ऐसी है, सुख ऐसा है, आनंद ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं। तुमको आवश्यकता लगती है कि नहीं लगती है वो लोग, आत्मशांति की जरूरत है क्या? जरूरत है तो पुरुषार्थ चलेगा, बिना जरूरत कोई भी पुरुषार्थ कर सकता नहीं और कोई करेगा भी नहीं बिना जरूरत। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु का ये स्वरूप है। जिसको ऐसी श्रद्धा है मैं मेरे से करूं तभी होने का है मेरा आत्मकल्याण, फिर भी गुरु मुझे उपकार रूप है वो बात छोड़ते, उपकार की बात छूट गई तो स्वसंद हो जाएगा और सही योग्यता में उपकार बुद्धि कभी हुए बिना रह देने, तो उसको श्वसन में नहीं जाएगा वो, उपकार बुद्धि छूट गया तो श्वसन में जाएगा जाएगा और जाएगा। यहाँ तो ऐसा एक जीव लिया है कि गुरु कुछ करते नहीं है, गुरु अंगुली निर्दोष करते हैं, निर्देश करते हैं, कुछ करते नहीं है। ऐसे अंगुली निर्देश करते तो तुम्हारा जाने का मार्ग भीतर में है, बाहर मत जाओ, अंगुली निर्देश करते, जो पात्रतावान जीव है वो अंगुली निर्देश करने वाले का भी उपकार भूलते हैं। अगर वो उपकार को भूल गया शोषण में चल जाएगा, उसका आत्महित कभी होने वाला नहीं है। ये बात है, हाँ, वो सहज अपनी भूमिका का व्यवहार होना सहज है। ये वचन तो बेंत्र के हैं, ज्ञानी थे, समर्थ ज्ञानी थे, फिर भी गुरु का उपकार कितना आता है इसके वचनामृत में। उपकार बुद्धि से तो वहां तक वो बोलते थे कि हमारी प्रत्येक पर्याय पर श्री गुरु का उपकार है। क्या? समय समय की प्रत्येक पर्याय पर श्री गुरु का उपकार हमको दिखता है। अगर हमको वो नहीं मिलते और उनसे हमको बोध नहीं मिलता तो हमारी ये दशा होती नहीं, हमारी ये वर्तमान दशा होती। तो ज्ञान दशा में भी इसका उपकार, इसका मतलब वो नहीं है कि वो उसको व्यवहार का पक्ष है, सद्भाव का पक्ष है, वो बात होती। ये चीज आए बिना रहती नहीं, बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं है। ऐसे बात है, फिर भी गुरु मुझे उपकार रूप है और गुरु ने ही मुझे सब दिया है। देखो, मान्यता में वो बात नहीं है कि गुरु कुछ देते हैं करते हैं इससे लाभ होता है, भक्ति भाव में भावना में कि तो प्रभु ये आप यो वर्तु करणाधीन, कि तो गुरु ये बतावियो वर्तु करणाधीन, ऐसा नहीं लिखा। आप ही तो क्या, हमारा आत्मा उसकी जेब में था कि दे दिया, चलो ले जाओ तुम्हारा आत्मा। लेकिन अंगुली निर्देश करके बताया, तो गुजराती में आंगली चिंदी है, हम कैसे आंगली चिंदी
बराबर,
उसको वो उतना उपकार मानते हैं कि हमको आत्मा दे दिया। क्या? आत्मा दे दिया। हम हमारी आत्मा को खो बैठे थे, जैसे हमारे कोई कीमती चीज को हम खो बैठे हों और घर में ऐसी जगह वो रख दी हो कि अगर बताने वाले नहीं बताते सारा जिंदगी इसके बिना ही चलाना पड़ता। तो जिसने बताया उसने दिया का बराबर है, दिया के बराबर हुआ क्या नहीं हुआ? तो भाव तो बराबर आया है, उपकार भाव तो ऐसा ही आना चाहिए, यथार्थ है। तो क्या है कि उपकार जब उपकार का अनुभव होता है, उपकार बुद्धि होती है उपकार के अनुभव के साथ, वो उपकार के भावों में, बहुमान के भावों में, भक्ति के भावों में, विनय के भावों में द्रव्यानुयोग की टांग नहीं अड़ाते। क्या? वो द्रव्यानुयोग की टांग वहां नहीं अड़ाते। क्यों? कि भक्ति भक्ति के तरीके से होती है, द्रव्यानुयोग के तरीके से होती नहीं। शरणानुयोग का सिद्धांत शरणानुयोग के सिद्धांत से ही चलता है, उसमें द्रव्यान योग नहीं चलता। तो यहाँ तो वन वन वचन काया की क्रियाएं होती है चरणानुचरण में, तो आत्मा के परिणाम और मन वचन काया की क्रिया, ऐसा व्यवहार निश्चय है, ऐसा होता है। यहाँ द्रव्यानुयोग लगाए आत्मा शरीर का कुछ नहीं कर सकता, चरण का बात खत्म हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय पद्धति में सिद्धांत अपने अपने स्थान में रहना जरूरी है। एक अनुयोग का सिद्धांत दूसरे अनुयोग में ले जाओगे, जिन वाणी की विरोधाभासी परिस्थिति दिखेगी, जबकि अविरोध है। पारमार्थिक हेतु सबसे निकलता है, भक्ति से भी, करणाचरण से भी, द्रव्यानुयोग से भी, करणानुयोग से भी, कथानुयोग से सबसे परमार्थ तो निकलता ही है। हमारा मतलब परमार्थ से है, सिद्धांत की लड़ाई करने से नहीं है। उसमें तो परमार्थ बात परमार्थ का ही तो खत्म हो जाएगा, रहेगा ही। बड़े बड़े आचार्यों ने तीर्थंकरों का स्तोत्र लिखे हैं, स्तुति किया है, स्तोत्र मैंने स्तुति, उसमें अन्य मत की तरह लिखा है सब। आप ही हमारे तारणहार हैं, आपने ही हम लोग को तिराया, और जब जब हमको तकलीफ होती आप ही हमारी तकलीफ दूर करने वाले हैं, करते ही हैं, हम तो अंधे थे, आपने हमारे आंख में अंजन डाल करके हमको देखता कर दिया, हम तो पंगु थे, आपने चलाया हमको, हम तो गूंगे थे, आपने बोलना बोलना सिखाया। ऐसे ऐसे स्तुति करते हैं आचार्य लोग, ऐसे स्तुति करते हैं। तो स्तुति स्तुति के ढंग से होती है, भक्ति भक्ति से ढंग से होती है, ज्ञान योग के ढंग से भक्ति नहीं होती। और जिन आचार्यों ने ऐसा लिखा है वो सिद्धांत के खैरखा थे, तो मामूली नहीं थे। सिद्धांत सीखने के लिए लोग इसके पास जाते थे, उन आचार्यों के पास जाते थे जिन्होंने ऐसी स्तुति की है, उनके पास जाते थे। अध्यात्म में भी ऐसा है, अध्यात्म में द्रव्यानु युग को साइड में रखा पड़ता है कभी। कुंदकुंदाचार्य कारण परमात्मा की भावना भाते हैं नियम सार, तो कहेंगे साई पर्याय पर द्रव्यम पर भावम हेयम इति। साई भाव तो केवल ज्ञान है, परमानंद है, साई सम्यक दर्शन है, साई चारित्र है, सब पर द्रव्य है, पर भाव है और हे है। अभी तो पहुंचे नहीं वहां, इसके पहले वो ऐसे बात करते हैं, जब लिखा तब तो पहुंचे नहीं थे, अभी भी स्वर्ग में है, अभी भी नहीं पहुंचे। लक्ष्य पूर्णता का है, और द्रव्यानुयोग के सिद्धांत के मास्टर है। देखो प्रवचन सा उत्पाद वही ध्रुवयुक्तम सब, कितनी सूक्ष्म चर्चाएं करते हैं। तो उनको क्या द्रवगुण पर्याय का ज्ञान नहीं था क्या? एक शायिक पर्याय को परद्रव्य बोल दें, पर भाव बोल दें, लेकिन तभी भावना सही आती है। इस प्रकार से ही त्रिकालिक स्वरूप की कारण परमात्मा के परम पारिणामिक भाव के भाव का उत्कृष्ट होती है। तो उसमें बीच में द्रव्यानुयोग लाना जरूरी नहीं है, आगम का विषय और अध्यात्म का विषय अपने अपने स्थान में है, एक दूसरे में टांग अड़ाओगे तो दोनों में से जाओगे, एक भी तो अंगीकार कर सकोगे, ये बात हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, विवाद से तो कभी निबेड़ा आने वाला है ही नहीं। सभी बातों परमार्थ साधने के लिए कही गई है। मैं मेरा परमार्थ कैसे साधूं, इन बात से, उस बात से, उस बात से, सभी बातों से, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, तभी तो हम जिनवाणी पढ़ने के अधिकारी हैं, वरना हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक ही प्रश्न ज्ञानी के पास, गुरु के पास दो जीव करता है, क्या प्रश्न एक ही है, पर दोनों को अलग अलग जवाब मिलता है। क्यों ऐसा? एक प्रश्न का तो एक ही उत्तर होना चाहिए, दोनों को अलग अलग क्यों जवाब देते हैं? कि इसकी योग्यता में ऐसा जवाब देना वो ही उसके आत्मकल्याण का लिए बराबर है, योग्य है, उसको ऐसा जवाब देना वो इसके लिए आत्मकल्याण के योग्य है, पर वो बात हमने प्रत्यक्ष देखी है। एक दफे एक मुमुक्षु ने, वो क्या हुआ, इस स्वरूप का निर्णय पर बहुत जोर जाता था, निर्णय वाली बात पर, बंसरी को पूछने लगे। तो पहले तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करने को 144 गाथा में बुलाए, तो पहले तो निर्णय करना ठीक है ना, तो पहले तो निर्णय करना उस पर उसका वजन जाता था। बंसरी वजन उड़ाने के लिए कहीं और जवाब देते थे, बात तो सही थी उसकी, उसकी समझ सही थी, लेकिन वेट सही नहीं था, वजन सही नहीं था। तो बात सही होने से सही है ऐसा नहीं बोल देंगे, उसका वजन नहीं जाए ऐसी बात करेंगे। ऐसी बात है, वजन बात सही होने पर भी वजन उल्टा जाता है। पारमार्थिक लाभ होगा नहीं सही बात से, क्या फायदा सही बात का, ये बात है। જોનારો પોતાની યોગ્યતાથી જોવે છે, એ પોતે એમ કે છે કે મેં શું કર્યું, મેં તો મારું કામ કર્યું, તમારું થોડું કર્યું છે, પણ કામ આમ થાય છે એ મારા અનુભવથી હું તમને કહું છું। તો એ પોતાની સાઈડથી એમ કે છે કે હું અંગુલી નિર્દેશ કરું છું, પાત્રતા બાબા એમ કે છે કે તમે આખો આત્મા જ એમને આપો છો, એ તો પ્રભુએ આપ્યો, પ્રભુ કહેતા હૈ ઉસકો, ગુરુ નહીં કહેતા હૈ ઉસકો, ક્યા કહેતે હૈ, પ્રભુ કહેતે હૈ। या ना यम नियम संयम आप कियो, पीछे लिया है, पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सो गुरु। क्या है कि गुरु के परिणमन को देखते हुए उनके पर प्रेम आता है, भक्ति होती है, उपकार बुद्धि होती है, देख करके तो उस देखने में उसने उसने परमार्थ को देखा कि श्री गुरु कैसे आत्म कल्याण को साधते हैं। तो आत्म कल्याण साधने के लिए जो शास्त्र का भेद मैंने मर्म है, भेद माने रहस्य है, तो रहस्य उसने वहां देखा खुला, शास्त्र में तो छिपा हुआ है, खुला कहाँ है? मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में है, वो तो वो कहता है शास्त्र मर्म नहीं है, मर्म देख लिया अभी तक ज्ञानियों का हृदय में। तो जो बात शास्त्र पढ़ करके भी समझ में नहीं आती, वो बात शास्त्र बिना के समझ में आ जाती है। ये सत्संगति का महात्म है। प्रत्यक्ष योग का रहस्य है और महत्व भी है। तो बात यही है कि शब्दार्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा प्रयोजन से संबंध है। ते तो प्रभु ये आपियो कहना, आपियो बतावियो क्या आपियो, कि छोड़ छोड़ झंझट को, इस झंझट को तुम छोड़ दो, तुम अनुभव करो तुमको क्या होता है, तुम अपने अनुभव को देखो और तुमको लगता है कि मेरे पर उपकार होता है तो तुमको कुछ सिखाना नहीं है। अगर तुमको उपकार होता है ऐसा नहीं लगता है तो भी तुमको कुछ सिखाना नहीं है, जाओ। सहज होता है, उल्टा भी सहज, सुलटा भी सहज। बात एक अलग स्तर की है। गुरुदेव कहते थे कि ऐसे सही निमित्त का उपकार बुद्धि से विवेक आया तो निमित्त का विवेक नहीं है, आत्मा का विवेक है। परमागम सार 831 नंबर में वो बात किया, आत्मा का विवेक है, निमित्त का विवेक नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनडायरेक्टली आत्मा को कल्याण का कारण है, भेद रूप से कहे। अभेद रूप से कहे तो निमित्त और उपादान में कोई अंतर नहीं है। एक क्यों हो गया भक्ति भाव से, एक क्यों हो गया, वो अलग स्तर की बात हो गई, स्तर ही अलग हो गया कि हम तो भेद देखते ही
नहीं। अंतर जो है
वो तो क्या है कि ज्ञानी और परमात्मा में अंतर दिखते हैं, लेकिन यहाँ अपनी आत्मा और उनकी आत्मा का अंतर की बात चलती है। ऐसी बात है। स्तर ही बदल जाता है। ત્યાં સુધી હજી જુદો રાખવા ને, અહીં તો ભાઈ એક જ છે, પરાભક્તિ ની છેવટ ની હદ લીધી ને, એ વાત છે, સ્તર જ આખું જુદું છે। गुरु 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 ने ही मुझे सब कुछ दिया है ऐसा स्वभाव आता है, परंतु ऐसा स्वभाव आने से व्यवहार का पक्ष हो जाता नहीं है। उसकी श्रद्धा तो अलग ही है,
श्रद्धा में तो जो स्वरूप है वो ही है, फिर भी भक्ति में ऐसा ही भाग आएगा और ऐसी भक्ति ज्ञानी ही कर पाएंगे, ये बात है। यथार्थ श्रद्धा की बात तो अलग ही है, ये बात तो अलग ही है, यथार्थ श्रद्धा की बात अलग है, उपकार बुद्धि का भाव आए वो बात अलग है, दोनों अपने स्थान में ठीक है, विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसे श्रद्धा वाले को ऐसा ही भाव आएगा, ऐसा भाव आने को ऐसी श्रद्धा होगी, ऐसा है। यथार्थ श्रद्धा की बात तो अलग ही है, वह सहज रूप से ज्ञानी को यानी भेद ज्ञानी को होता है, ज्ञानी को और भेद ज्ञानी को दोनों को सहज रूप से ऐसी श्रद्धा होती है और ऐसी अपकार बुद्धि भी होती है, दोनों साथ में होता है, यही व्यवहार निश्चय की संधि है, सुमेल है। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चयाभास स्वच्छंद हुए बिना रहेगा नहीं। जो भी मुनि है ज्ञानी है जिसने आत्मस्वरूप की श्रद्धा की उग्र बातें की है, तिखी तिखी बातें की है, वो महात्माओं ने भक्ति भी तिखी ही की है, उसकी भक्ति में मौलप कभी नहीं आई, इसका दो सबूत है हमारे पास, एक नियम सार शायिक पर्याय को परद्रव कहने वाले भगवान की और गुरु की भक्ति इतनी जोर से करते हैं तो भक्ति का भाव आता है, तो बहुत जोर से करते हैं तो इसकी भक्ति भी अव्वल नंबर की होती है। और दूसरा जीवंत उदाहरण है सुगणी जी का, तो श्रद्धा के विषयभूत आत्मा की बहुत तिखी तिखी बात करते थे और गुरु भक्ति भी तिखी किया उन्होंने कि मेरे गुरु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नहीं है, वस्त्र वाले नहीं है, मेरे गुरु तो अनंत तीर्थंकर से अधिक है, ओवरबाउंड जाते हैं। स्वरूप की श्रद्धा के विषय की बात करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, सब बाउंड्री छूट जाएगी, और भक्ति की बात करेंगे तो वो भी लिमिट के बाहर जाएंगे। आगरा में पहली शिविर लगी 84 में करीब 12-13 साल में, तो पदम सिंह जी ने वो चाकड़ा अनंत तीर्थंकरों से अधिक वाला स्टेज पर लगा दिया, तो सब श्रोताजनों को पढ़ने में आए, हम लोगों के पीछे दोपहर की चर्चा रखी थी, वहां तो दिगंबर समाज बड़ी है, अपनी समाज बहुत छोटी है, लोग 400-500 जने आते थे, एक जवान आदमी खड़ा हो गया, गरम हो गया, ये क्या लिखा है, हमारे अनंत तीर्थंकरों की अवमानना होती है, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है, बैठो बैठो थोड़ा शांति से बात करो, हम ही चलाते थे प्रश्न का दौर, बोलो कि आप दरिद्री हो, जगत में करोड़पति अरबपति भी बहुत है, लेकिन जो लखपति तुमको 1,00,000 रुपया दे दें और तुम हो जाओ अरबपति, तो दुनिया के अरबपति से वो लखपति तुम्हारे लिए ज्यादा है कि अधिक है कि नहीं है, है ये बात वैसी है, तो पूरा पढ़ो लिखते हैं कि हमारा प्रयोजन गुरु से सिद्ध हुआ, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। तो कारण भी लिखा है, अधूरी बात नहीं लिखी है, पूरी लिखी है। और क्या लिखे, मेरे लिए अनंत शंकर से अधिक है, सारे जगत के लिए ये कान्हा स्वामी अनंत शंकरों से अधिक है, ऐसा है उसने बोला भी नहीं और कहा भी नहीं। तो बात उसकी व्यक्तिगत है, उपकार बुद्धि की, उसमें आपको क्या आपत्ति है। आप उसको सिद्धांत में क्यों खींच जाते हो, उसकी खुद की भक्ति है, आप बढ़ाते हो सिद्धांत वाली बात उसमें। बात भक्ति की आपको समझ में भी आएगी, भक्ति कैसे होती है वो बात भी आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आप शांत हो गया आदमी, ऐसा बात होता है।
महावीर जी में भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, अटल जी का प्रश्न चल रहा था, जब सोगानी जी सर की योग्यता आए तुम्हारे में तब तुमको पता पड़े कि कितना उपकार हुआ गुरुदेव का। योग्यता के बिना वो भी खबर नहीं पड़ती कि ज्ञान का कितना उपकार हुआ। बहुत अच्छी बात कही।
जो रास्ते पे वो लोग गुजरे हैं, वो रास्ते पे गुजरे बिना अनुभव ज्ञान कभी नहीं होता। और अनुभव ज्ञान ही बलवान है, प्रमाण है, बलवान प्रमाण है। बाकी तर्क लड़ाने से कोई फायदा नहीं है, टूटना हो जाएगी। स्वरूप के विषय में भी स्वरूप का विशेषण विशेषताएं सुन करके पढ़ करके कल्पना में नहीं चढ़ना, तो अनुभव का विषय है, विचार कल्पना का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है स्वरूप का। अनुभव का प्रयास करो और अनुभव में आकर के मानो, मान्यता तो अनुभव से होती है, बिना अनुभव से ही मान्यता होती नहीं कभी। यथार्थ श्रद्धा की बात तो अलग है, वह सहज रूप से ज्ञानी को यानी भेद ज्ञानी को होती है, जिज्ञासु को भी मैंने मुमुक्षु को भी बुद्धिपूर्वक की जो श्रद्धा है वह तो श्रद्धा में भूल नहीं आती, यथार्थ श्रद्धा में भूल नहीं होती, पर यथार्थ भक्ति में भी भूल नहीं होती। दोनों जगह उसको भी ऐसा होता है, उसको भी ऐसा होता है। गुरु की भक्ति करे उसमें श्रद्धा की भूल आती नहीं, आती नहीं। गुरु की भक्ति करे उसमें कोई श्रद्धा की भूल हो जाती है, वो समझता ही नहीं इस बात को, उसमें व्यवहार का पक्ष आता नहीं।
दर्शन में उगड़े
हैं,
दर्शन में उगड़े
हैं, हाँ दर्शन में उगड़ गलता है। जिज्ञासु मैंने मुमुक्षु देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है, उसको आती ही है, होती ही है, फिर भी व्यवहार का पक्ष नहीं आ जाता, व्यवहार का पक्ष आ जाता नहीं, नहीं। ये वो भय रखना गलत है, रखना ही नहीं चाहिए। उसमें सर्वस्व माने तो व्यवहार का पक्ष आ जाता है, तो होता नहीं। श्रद्धा श्रद्धा के स्थान में है, भक्ति भक्ति में, दोनों परिणाम है उसको, इसलिए उसको एक बात होती है तो एकांत हो जाता है। दोनों में से एक ही होता और दूसरा नहीं होता तो एकांत हो जाता। श्रद्धा वाले को भक्ति नहीं होती तो श्रद्धा यथार्थ नहीं रहती, एकांत हो जाता है। और भक्ति वाले को श्रद्धा नहीं होती तो भक्ति का एकांत हो जाता, श्रद्धा नहीं रहती, ये दोनों साथ में ही रहता है। और जितना उग्र श्रद्धा का परिणमन उतना ही भक्ति का उग्र परिणमन आएगा, ये दोनों, ये पूरा सबूत है इस बात का, ऐसी बात है। जिसको भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे आचार्य धवलादि शास्त्र की रचना करते हैं। देखो वीरसेन स्वामी, भगवान वीरसेन स्वामी बहुत समर्थ आचार्य हुए। कलिकाल सर्वज्ञ बोला जाता था। क्या बोलते थे लोग कि कलिकाल के सर्वज्ञ है। देखो सर्वस्व माने एकांत करे, एकांत करे, सर्वस्व शब्द की जगह अपन उसका अर्थ एकांत कर दिया। कि बोलने में तो सर्वस्व ही बोलेगा कि गुरु ही मेरा सर्वस्व है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व ही कहाँ है, श्री गुरु में मेरा अस्तित्व आ जाता है, ऐसा बोलेगा। बोलने में आएगा श्रद्धा अपने स्थान में, भक्ति अपने स्थान में, ये बात है। जिसको भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे आचार्य धवलादि शास्त्र की रचना करते हैं। तो कोई आचार्य अध्यात्म के शास्त्र की रचना करते हैं, कौन कौन आचार्य जैसे प्रणाम योग की रचना किया, तो उसमें क्या पक्ष आ जाता है, उसको कोई करणानुयोग का शास्त्र लिखने से व्यवहार का पक्ष आता नहीं। और पद्मानंदी आचार्य भक्ति के शास्त्र लिखते हैं, उसमें पंचविंशति में 26 अधिकार में कहीं स्तोत्र के अधिकार है। और ऐसी भक्ति करे प्रभु आप में तो उतनी इतना मीठापन है, इतना मीठापन है कि ये जो गन्ना है शिरडी तो चिचोड़े में पिलाने लग गई कि मेरे में क्या है, और द्राक्ष शर्म खा करके जंगल में चली गई। क्या आपका मीठापन है, आप तो बहुत मीठे लगते हैं, उसके आगे गन्ना और द्राक्ष कुछ लगते नहीं है। आचार्य महाराज महान आचार्य छठे सातवें स्थान में झूलते हैं, कैसे कैसे बात करते हैं। भक्ति भक्ति के ढंग से होती है। भगवान की भक्ति करने को बैठे आप मेरे कुछ नहीं कर सकते, आप भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं भी सर्वज्ञ हूँ, मैं भी आप आपके बराबर हो, आप मेरे बराबर है, वो कोई भक्ति का तरीका नहीं है। हमारे एक मुमुक्षु को स्वच्छंद बहुत हो गया मुंबई में, तो पैंट शर्ट इंसर्ट करके आया मंदिर में, पैंट के दो जेब में ऐसा रख दिया, हाथ रख दिया, ऐसे खड़ा हुआ, नमस्कार नहीं करूंगा, नहीं करना है, प्याला फट जाता है। मैं भी सर्वज्ञ हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ, नहीं बंधन नहीं करूंगा, ठीक है। भगवान तो बिचारे उसको क्या लेना देना, कोई स्वच्छंद करो, कोई भक्ति करो, उनको कोई लेना देना है, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। परिणाम का कोई ठिकाना नहीं रहता। कोई आदमी हमारे पास है, हमको जिन मंदिर करना है, हमको स्वाध्याय हॉल करना है, हम 15 लाख देंगे, हम इतने लाख देंगे, ठीक है चलो। देखो क्या जीव के परिणाम होते हैं। उद्रव दृष्टि प्रकाश पढ़ करके फिर प्याला फट गया, ऐसा होता है। इसलिए गुरुदेव ने पहले सीमित कर दिया था, ये दूरदृष्टि प्रकाश को सीमित कर दिया। तो भक्ति का शास्त्र की रचना करते तो उसमें व्यवहार का पक्ष आ जाता नहीं है, वहाँ भी साथ में वेद ज्ञान की धारा वर्तती है। ज्ञानी का दृष्टांत से फिर मुमुक्षु की बात करेंगे। दृष्टांत लिया सिद्धांत तो सुन जाना है, जिज्ञासु का मुमुक्षु का तो बात करेंगे, थोड़ा खोल करके बात करेंगे। समझ हुआ
इसमें आलोचना पाठ में आता है कि गांव पति जो हो गए सो भी दुखिया दुख हो गए, तुम तीन भगवान के स्वामी दुख बैठो और चले जाओ। क्यों आते काम दी है हमें तब में हम लगे क्या व्यवहार में कथन से तो कथा बुद्धि वाला हो गया। एक राजा हो गांव का जो मुखिया हो वो भी जनता का दुख दूर करता है, तो हे भगवान आप तो तीन लोग के ना, यदि आप मेरा दुख दूर नहीं करो तो आप तो एक गाँव के मुखिया के बराबर भी नहीं रहोगे।
तो क्या है कि वो अन्य मति जैसी भक्ति करते हैं, ज्ञानी आचार्य करते हैं कि आप हमारे काम करो, करते हैं आपने बहुत किया है अभी भी करो, अर्थ नहीं करने की बात है, भक्ति करने की बात है, अर्थ करने की बात नहीं है, हमारी आदत बन गई हर बात के अर्थ करने, वहाँ अर्थ नहीं करने का है वहाँ भक्ति करने का, ऐसी बात है भक्ति भाव में ऐसा ही होता है, अर्थ वर्थ के सवाल नहीं। हमको भक्ति के पद सुन करके अर्थ नहीं करना है, भक्ति का भक्ति के पद में भक्ति करनी है, भक्ति करने के लिए भक्ति के पद, अर्थ करने के लिए नहीं है, अर्थ करने के लिए दूसरे बहुत शास्त्र।